अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम।
मैम, मुझे बुखल के बारे में बता दें। देखिए, मेरे जहन में ये आता है कि जैसे औरतों के पास अखराजात होते हैं ना घर के, तो जब महीना आखिर जाता है तो उनके पास पैसों की कमी हो जाती है। जब कहीं वो फिर वो क्योंकि बच्चे भी हैं, घरदारी भी है, वो बहुत सोच सोच के खर्च करती हैं कि हमें किसी की मोहताजगी ना करनी पड़े, कहीं किसी की मदद भी करनी पड़ती है, तो इंसान इस सोच में पड़ जाता है मैम, करूँ या ना करूँ। मैम, मुझे ये बताएं कि क्या हमारा ये रवैया बुखल में आता है?
सुभान अल्लाह, इसकी मिसाल वही है कि जब इंसान नेकी करता है तो शैतान वसवसा डालता है कि रिया का, और इसी तरह इस वक्त भी अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र वयअमुरुकुम बिलफ़हशा। अपने रवैये पे गौर करना चाहिए कि अगर सेल लगी हो या मेरी पसंद की कोई ऑफ़र हो, कोई डील हो, मेरा दिल कर रहा हो, तो मेरा बिहेवियर, मेरा एक्ट क्या होगा। और अगर दीन का मामला आया है, कोई नेकी का काम है, कोई ज़रूरतमंद है, तो फिर मेरा मामला क्या है और मेरा तवक्कुल कहाँ गया है। अंदाज़ा होता है इंसान को कि फ़लाँ फ़लाँ ज़रूरियात, चीज़ें, काम हो सकते हैं, लेकिन जब इंसान किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करता है तो अल्लाह की भी तो मदद के वादे हैं, और अल्लाह अपने वादों में सबसे बढ़ के सच्चा है, उससे बढ़ के कौन सच्चा हो सकता है। एक एवरेज मियाना रवि इख्तियार की जा सकती है, और मदद करते हुए अल्लाह से मदद की उम्मीद रखी जा सकती है।
मैम, ताल्लुकात में बुखल क्या है, और बुखल और कहाँ कहाँ पे,
हाँ, बुखल सिर्फ
इसकी रेंज
माल का
कहाँ
नहीं
कहाँ?
होता, बुखल कई चीज़ों का होता है। बाज़ औक़ात इंसान यानी विदाउट माल कई ऐसे ऑप्शन चीज़ें होती हैं कि जहाँ आपका पैसा भी नहीं लग रहा और आप हेल्प आउट कर सकते हैं, और आप बखीली की वजह से ना करें। जैसे आप खुद इल्म का एक सोर्स हो, कहीं से कनेक्टेड हों, आप अपने मसाइल में सवाल पूछ सकते हैं, आपसे कई भी चीज़ों में आप एक आपको ऑप्शन सोर्स मिला हुआ है, लेकिन कोई अगर आपसे पूछे तो आप ना बताएं, या वैसे ही आप उसको ना फैलाएं कि मैं ये कर रही हूँ, कोई और ना करे, मुफ्त का मशवरा भी ना देना नेकी का, ये तो शदीद बखीली है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
मुसाफिर की नमाज के बारे में मालूम करना था। जैसे हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो रुकना मुमकिन है, हम अपनी गाड़ी से हैं तो रुक भी सकते हैं वहाँ, मगर टाइम का भी है इशू, और फिर अब तो इंडिया में जगह जगह नमाज भी ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। अब वैसे भी रोड पे नमाज पढ़ना या साइड में भी कहीं भी, तो वो नापाकी का भी मसला रहता है कई जगह का। तो हम मतलब गाड़ी में ही जैसे जा रही है, सिमत का भी नहीं पता कि हम जा रहे हैं तो किस सिमत है काबा, तो हम पढ़ सकते हैं जी?
नफल नमाज तो पढ़ी जा सकती है, फ़र्ज़ नमाज के लिए उतरना ज़रूरी है, लाजिम है, फ़र्ज़ है, और ये सिवाय जंग के जायज़ नहीं है। अलबत्ता नमाज़ें जमा की जा सकती हैं, आम सफ़र में तो आसानी से नमाज़ जमा की जा सकती है। मतलब आप देखें कि जोहर और असर का वक्त है, 12:30 से ले के दोपहर के सूरज ग़ुरूब होने तक, जो भी टाइम हो आपके सिटी के हिसाब से, कितने आवर्स बनते हैं। अब मुसलसल इतना टाइम तो गाड़ी भी नहीं दौड़ सकती, फ्यूल डलवाने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। और फिर ये कि अपनी गाड़ी में तो ये भी सहूलत होती है कि इंसान कोई प्रेयर मैट, जाय नमाज वगैरह रख ले, कोई चादर, कोई कपड़ा जहाँ बिछा के पढ़ ले, और सारी ज़मीन
वो
पाक है
तो
सिवाय कब्रिस्तान और उसके कि आप पढ़ सकते हैं।
मैम, गाड़ी में बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए?
फ़र्ज़ नमाज गाड़ी में नहीं पढ़ सकते, मुसलसल कई दिनों से टॉपिक आ रहा है, फ़र्ज़ नमाज गाड़ी में नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि आपका सफ़र ऐसा है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या इसी तरह बाय एयर है, कि बाय एयर में भी यानी सीट के अलावा ऑप्शन नहीं है, और जमा करके भी पढ़ना मुमकिन नहीं है, यानी जमा करें तब भी टाइम निकलता है। मसलन 12-12 घंटे की फ़्लाइट्स हैं, और उसमें नमाजें तो ज़ाहिर आ जाती हैं इतनी सारी, तो उस सूरत में है कि जैसे मुमकिन हो फिर वैसे पढ़ लें, क्योंकि नमाज वक्त पे फ़र्ज़ है। लेकिन जिस तरह का
अच्छा,
आपका
वो
सवाल है, यानी आपका ज़मीनी रूट है, अपनी गाड़ी है, या इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो, तो दो नमाजों को जमा करने के बाद तो वक्त मिल ही जाता है, इससे ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं होता। फ्यूल डलवाने के लिए ब्रेक लगती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोई कहे तो आपको पता है कि हर 2-3 घंटे बाद रूट पॉइंट्स आते हैं, स्टॉप होता है। फ़र्ज़ नमाज गाड़ी में नहीं पढ़ी जा सकती।
अब तो खैर यहाँ इशू हो गया कि हर जगह नमाज ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं।
हाँ जी, अल्लाह ताला हिफाजत करे और मदद फरमाए, लेकिन फिर भी कई सूरतें निकल सकती हैं।
जी। और ये एक बात ये कि अगर हम 12:30 बजे जा रहे हैं तो असर की नमाज पढ़ सकते हैं, फिर जमा कर सकते हैं
जी
सब।
जी बिल्कुल, जोहर का वक्त हो गया है और यही जमा बैन सलातैन सफ़र में इसकी रुख्सत है। जिस तरह नमाज कसर हो जाती है, इस तरह नमाज दो नमाजें जमा भी हो जाती हैं, वो ग्रुप्स हैं।
अक्सर उलमा का मैंने ये सुना है कि वो लास्ट टाइम में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे
नहीं
ऐसा
नहीं ऐसा नहीं
नमाज।
है, आप जोहर को
अच्छा
असर के साथ, असर को जोहर के साथ, दोनों को दरमियान में, अब जब जाहिर है अपने सफ़र के हिसाब से ना, सफ़र के हिसाब से रुख्सत मौजूद है। अगर आपका सफ़र ऐसे है, अब आपकी 1 बजे गाड़ी निकलनी है और वो जाके मग़रिब के बाद होगी, तो आपके पास वही 12:30 बजे दोनों नमाज़ों का वक्त है, कर सकते हैं, वक्त शुरू हो चुका है।
अस्सलामुअलैकुम ऐशा,
वालेकुम अस्सलाम।
कैसी तबीयत है आपकी?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ऐसा ये पूछना था कि 2 से ज्यादा नमाजें जमा की जा सकती हैं?
2 से ज़्यादा नमाजें नहीं, ये ग्रुप्स हैं। नमाज वक्त पे ही फ़र्ज़ होती है, जोहर और असर, मग़रिब और इशा, बस। और
अगर
फजर अपने
ज्यादा
वक्त पे ही
कजा
है।
हो जाए,
जी
अगर ज्यादा नमाजें कजा हो जाए, 3 हो जाए 4 हो जाए, तो
अब एक
उनकी कसर कैसे अदा कैसे किया जा सकता है, उनको कजा नमाज?
कसर की कजा नमाज,
जी
यानी सफ़र की आप पूछ रही हैं,
हाँ जी,
तो वो तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे उनकी है तरीक़ाकार। एक है हो जाना, वो जाहिर है बाज़ औक़ात भूल चूक की वजह से, बाज़ औक़ात सुस्ती की वजह से, या किसी मजबूरी की वजह से, या जो भी अल्लाह आलम हो गया, तो उसको वैसे अदा करें जिस तरह वो वक्त पे होती है। कज़ा नमाज का यानी जो नमाज लेट हो गई है, वही तरीका होता है जो वक्त पर पढ़ने जाने वाली, पढ़ी जाने वाली नमाज का होता है, उसमें तब्दीली नहीं होती। इल्ला ये कि अगर आप कसर से हज़र में आ गए हैं, यानी सफ़र में नमाज कसर है, अब आपकी 3 नमाज़ें जमा हो गई, आप ना पढ़ सके, और अब घर पहुंच गए, अब हज़र है, तो अब क्या करें? इसमें फिर अहले इल्म की 2 आरा हैं। बाज़ कहते हैं उसका वक्त कसर में हुआ था तो वो कसर ही लौटाई जाएगी, बाज़ कहते हैं कि वो सफ़र की वजह से कसर थी, अब घर पहुँच गया तो अब पूरी पढ़े। तो ये बात ज़्यादा बेहतर है एहतियात और तकवा के, कि कम अज़ कम फ़र्ज़ रकात मुकम्मल पढ़ ली जाएँ अगर आप घर पहुँच चुके हैं, हज़र में आ चुके हैं। क्योंकि कसर में सुन्नत नफल तो वैसे ही माफ हो जाते हैं।
अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, यानी ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि आपका इरादा 15 दिन से कम का है तो उतने दिन आप कसर पढ़ेंगे, तो क्या ये ठीक है?
इसमें जो है ना, सुभान अल्लाह, आइम्मा जो इज्तिहाद करते हैं, उनके पास कोई ना कोई इशारा दलील मौजूद होती है, और जो तमाम के अक़वाल को पढ़ने समझने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंची हूँ, वो ये कि अगर आपका सफ़र इस तरह का लंबा है कि आपको कोई आइडिया नहीं है, वैसे ये कम होता है, क्योंकि जब हम बैरून मुल्क सफ़र करते हैं या इसी तरह दूसरे शहर, तो हमें वापसी की टिकटिंग वगैरह हो चुकी होती है, आउट ऑफ कंट्री गए हैं ना, तो आपकी यानी वन टू साइड तो नहीं होती, वापसी की भी टिकट कंफर्म करवाते हैं तो टूर मुमकिन होता है ना। जब ऐसा हो कि आपकी वापसी की टिकट कंफर्म है, आपको मालूम है, और आपका वहाँ स्टे 3-4 दिन से ज़्यादा का है, अब तो फिर वो आपका स्टे शुमार होगा, सफ़र शुमार नहीं होगा, ट्रैवल शुमार नहीं होगा। उन्होंने मेहमान नवाजी 3 दिन है, और कई मामलात जो हैं वो 3 दिन के लिए होते हैं, इस पर कयास करते हुए कि जो मुसाफिर है वो 3 दिन होता है, उसके बाद वो मुकीम बन जाता है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर आपको वापसी मालूम है कि वो 3-4 दिन से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ गोया आपका वो स्टे शुमार होगा और नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिर्फ जाने की टिकट थी, वापसी आपके काम के साथ है कि जैसे मेरा काम होगा मैं वापस आऊँगी, अब इस अरसे में आपको महीना भी लग गया, 3 महीने भी लग गए, लंबा अरसा भी, तो नमाज कसर पढ़ते रहेंगे।
जैसे नाजी उम्रे के लिए जाते हैं तो उधर फिर हमारी नमाज कसर होगी कि चूंकि टाइम का तो पता होता है इतने
जी
दिन के लिए
जी
जाना है
जी बिल्कुल, जो
तो।
हज में मखसूस नमाज़ें आती हैं, कसर होती हैं, उनके अलावा बाकी मुकम्मल नमाज़ें होंगी। और इसी तरह जाने और आने में जो आपका टाइम लगता है वो भी आपकी कसर होगी। इसी तरह आप कोई जाता है, जैसे मदीना पहुंचते हैं, 3 दिन मदीने स्टे होता है, फिर बाकी उनका 10 दिन मक्का में, तो वो जहाँ तक 3 दिन है वो उनका सफ़र कसर शुमार होगा। और इसी तरह जाने आने का भी दिन वो उनका कसर शुमार होगा।
मैम मैं भी इसी वाले से आपसे बात करने ही लगी थी, तो इन्होंने भी यही बात किया कि उस दिन भी पता ही नमाज के टॉपिक पे बात हो रही थी, तो कसर नमाज यही मैं कह रही थी, जब हम ज़्यादा अगर हम जाते हैं उधर उम्रे पे रुकते हैं या वो एक हम ज़्यादा स्टे करते हैं, तो वैसे तो हम इधर से सफ़र से जाते हैं थके हुए होते हैं, लेकिन होता है तो स्टे है, तो फिर इसीलिए मैं ही पूछ रही थी कि वहाँ फिर जाके जाते सार जो भी नमाज का टाइम होगा तो फिर वो क्या कसर पड़ेंगे पूरी नहीं पड़ेंगे, ताकि वहाँ पे तो स्टे हो रहा है ना हमारा।
स्टे कितना है, इसी के साथ जवाब है। स्टे वहाँ पे क्या आपका रिहाइश, जहाँ आप होटल पहुँच चुके, अपने मकाम पे पहुँच चुके, वहाँ आपने 10-12 दिन रहना है, 3-4 दिन से ऊपर रहना है, तो फिर मुकम्मल पढ़ना शुरू करें। हाँ, ये अलग बात है, सफ़र की वजह से आपकी थकावट है और
हाँ
हालत
जी
ऐसी मुशक्कत है, तो अभी आप फ़र्ज़ रकात पढ़ लें, यानी मुकम्मल फ़र्ज़
हाँ जी
रकात।
वही ना, जिस होटल में तो पहले जाए वहां पे पहुंच के फिर उसके बाद ही जाते हैं ना हरम में, तो फिर जो भी नमाज का टाइम होता है, लेकिन अगर थकान है तो उस टाइम फिर हम फर्ज ही पढ़ेंगे
जी, फ़र्ज़
कसर नमाज
मुकम्मल।
जैसे कि।
कसर का मतलब और है उसमें, तो फ़र्ज़ भी कसर कम हो जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ मुकम्मल पढ़ना ये तो कम अज़ कम है।
यानी फिर ये नहीं देखा जाएगा कि हम सफर में
जब आप अपनी जगह
थके
पे,
हुए हैं
मंजिल पे
फिर।
पहुंच चुके हैं ना, और आपका स्टे
हाँ
लॉन्ग
जी,
है, तो वो आपकी कसर ख़त्म हो जाती है।
लेकिन अगर हमने जैसे कि 10 दिन का स्टे है तो कुछ दिन हमने मक्का में रुकना है, कुछ दिन मदीना में, वही 4-4 दिन ही ज्यादातर होता है,
चार
तो
चार दिन
दो
तक
दिन तो
हद
सफर
सफ़र
में
की शुमार होती है। अगर
फिर
इससे
कसर ही
ऊपर है
पड़ी
तो फिर वो
जाए।
कसर से खारिज है।
लेकिन यह कि हम उधर हम अल्लाह के घर में रह के भी हम कसर ही अदा करेंगे, एक तो ये आता है कि सफर है, लेकिन ये आता है कि अल्लाह के घर भी हम
देखें
फिर
सायरा, इस
पहुंच
तरह तो
रहे।
सवाल जितने मर्जी करते जाएं कोई हद नहीं होगी ना। समझने की बात है शरीयत का असूल क्या है, बाकी इससे ममानियत तो नहीं है। ज़ाहिर है हरम की नमाज और हरम की जमात और उसका सवाब वो कई गुना है, तो जो वहाँ
मैम
सवाब और
हरम
इबादत
तो
के लिए
पढ़ेंगे
जाते
जमात
हैं।
के साथ, हरम में तो पढ़ेंगे जमात के साथ, वहां तो कसर का सवाल ही नहीं पैदा होता,
जी
वहां
ज़ाहिरी
तो
सी
जमात
बात है,
के साथ
बिल्कुल, इमाम के पीछे तो मुकम्मल नमाज होती है ना।
पढ़ेंगे। नहीं, जिस टाइम हम अगर पहुंचते हैं तो उस टाइम अगर नहीं है इनके जमात का टाइम, जैसे कि हम ऐसे पहले भी पहुंचे थे तो जुहर का निकल गया हुआ था, तो अभी असर की हुई नहीं थी, तो उस टाइम तो ज्यादा सफर से भी थके हुए हैं, तो उस हिसाब से यानी कि फिर दो
आप ये
फर्ज ही
दोबारा सुन
जुहर की जैसे
लीजिएगा,
हुए।
आप ये ऑडियो दोबारा सुन लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम इस तरह एक और बात है कि जैसे कि हम पाकिस्तान भी इधर से जाते हैं, बेशक उधर हमारी अपनी रहायश ही है, घर जाके स्टे करना है, तो अगर सफर से हम जरा बहुत थके हुए हैं, बंदे को रेस्ट का दिल चाह रहा है, लेकिन नमाज का भी टाइम है तो रहायश भी अपनी है, तो फिर उधर भी हम पूरी नमाज ही अदा करेंगे जाते
इसका
सार जो
भी
भी नमाज
जवाब
का
दिया जा
टाइम
चुका
होगा।
है कि आप मुसलसल सफ़र और मुशक्क़त की वजह से पढ़ने के काबिल नहीं हैं, तो सिर्फ़ फ़र्ज़ रकात पढ़ लें और ये कसर नहीं, मुकम्मल पढ़ लें जब आप मंजिल पे पहुंच गए हैं। सिर्फ़ थकावट की वजह से कसर नहीं होती।
ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
भैया को
मैंने ये जो फिका में पढ़ा था कि जो मुसाफिर है वो 15 दिन तक होता है, यानी अगर उसको अपनी कंफर्म है कि मैंने 15 दिन तक रहना है कहीं, तो वो उतनी देर कसर पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा या टाइम मुद्दत जो है वो आपके मुतय्यन नहीं है तो फिर वो आपकी कसर मतलब तवील हो जाएगी। तो क्या इतना टाइम ये जो सही है कि सिर्फ 3 दिन का ही कसर किया जा सकता है?
देखें, ये सारे जो इज्तिहाद या फ़िक्र हैं ये अहले इल्म के अपने फ़हम की बिना पर हैं, जो उन्होंने बाज़ रिवायात में से समझे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ असवार में से निकाले। सो इस बिना पर इस मामले में वसत मौजूद है कि आप जिस भी आलिम या इमाम से मसला पूछते हैं और उसको दलील के मुताबिक समझते हैं तो आप उस पर अमल कर लें। जहाँ तक रही अगर आप मुझसे पूछें दलील की बात, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है कि जिस तरह मेहमान नवाजी 3 दिन होती है और उसके बाद उसको इकामत शुमार किया जाता है, इस तरह की और बहुत सी मिसालें हैं जिसमें 3-4 दिन की हदबंदी होती है। रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 21 दिन, 20 दिन, 19 दिन या मुख्तलिफ इतने अय्याम नमाज कसर पढ़ते रहना सफ़र में, तो वो एक अनलिमिटेड सिचुएशन थी कि वापसी मालूम ना थी। अब बाज़ उसे समझते हैं, अंदाज़ा ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वापसी मालूम थी, इसके बावजूद आपने इतना अरसा पढ़ा, तो फिर वो उस तरफ जाते हैं कि इतने दिन भी नमाज कसर की जा सकती है जबकि वापसी मालूम हो। तो बहरहाल इस मामले में वसत मौजूद है क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ताज़ीन नहीं की, किसी आयत में वाज़ मील्स और सफ़र और ये चीज़ें फ़िक्स नहीं हैं। इट डिपेंड्स ऑन ट्रैवल, और ये ख़ुद अमल करने वाले को ख़ुद भी अंदाज़ा हो सकता है, और वैसे भी आजकल सफ़र में बहुत सहूलत होती है।
वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन सिर्फ यही होता है बाज़ औक़ात भूल भी जाता है तो पूरी नमाज पढ़ लेते हैं, तो फिर
नहीं,
इसलिए
ये बात समझ
इसलिए
लें,
कहते हैं गुनाह तो नहीं है अगर हम।
ये बात समझ लीजिए कि जो कसर का मामला है ये अल्लाह की रुख्सत है जो इंसान कबूल करता है। जबकि इवन बाज़ असलाफ में से, यानी नबी सईदा आयशा या इसी तरह सईदा इब्ने उमर, इनका आता है कि वो इवन कसर में भी पूरी पढ़ते थे और वो अजीमत को हासिल करना चाहते थे। तो बहरहाल जो सफ़र में भी पूरी पढ़ता है तो ये नहीं कि वो गुनाहगार होगा या नाफरमानी करेगा। कसर इज़ जस्ट अ रुख्सा, ये एक रुख्सत है, एक हदिया तोहफा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने छूट दी है, जो कबूल कर ले तो वो खुद सुखी है, जो ना करे तो वो खुद मुशक्कत का रास्ता चूज़ करता है। बस यही फ़र्क है।
यानी इस पर कोई गुनाह नहीं
नहीं,
है?
ये हुक्म नहीं है, ये रुख्सत है।
ठीक, यही मैंने पूछना था कि कहीं ऐसी ना हो कि नाफरमानी के जुमरे
नहीं,
में आ जाए ये
ये
बात
हुक्म
जैसे सूरह
होता तो फिर
बकरा।
हुक्म अधूरी शुमार होती, ये हुक्म नहीं है, ये जस्ट रुख्सत है, इजाज़त है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने दिया है। तो इवन बाज़ अहले इल्म रुख्सत कबूल करने को ज़्यादा अजर कहते हैं, ये जब अल्लाह ने दी है तो अल्लाह से तोहफ़ा क्यों न लें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफा, अम्मा बाद, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है और सलाम है उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। अल्लाह तू हमें अपने चुने हुए बंदों के तरीक़े पर चला और हमें उनके साथ जमा फरमा। फ़हमुल क़ुरआन बि उस्लूब सुआल वल जवाब, अंडरस्टैंडिंग क़ुरआन क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच, सवाल जवाब के ज़रिए फ़हम क़ुरआन सीरीज़ में आज पारा नंबर 5 है। ये दोरा क़ुरआन बाय Q&A है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। चूँकि पारा 5 का आगाज़ सूरह अन्निसा के साथ ही है जो पिछले पारे के आखिर से शुरू हुई और इस पारे में जारी है, और अन्निसा औरतों के हकूक़ की सूरत, इसमें हक महर का भी बयान है। हक महर से मुतालिक सवाल है, Q1, शरई हक महर कितना है? शरई हक महर कुरान सुन्नत की रोशनी में उतना ही होता है जो आपस में, यानी दुल्हा दुल्हन वली, इनकी बाहिमी रजामंदी से तय पा जाए, और ज़ाहिर है रजामंदी इस्तेदात के साथ होती है, तो इसमें इस्तेदात और रज़ा दोनों शामिल है। कोई तो अपनी इस्तेदात और रज़ा के हिसाब से ज़्यादा भारी से भारी भी कर सकता है। कुरान में किनतार का लफ्ज़ आया जो ख़जाने पर बोला जाता है, तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है और कम से कम मिनिमम भी हो सकता है, हत्ता के लोहे की एक अंगूठी भी हो सकती है, हत्ता के कुरान की एक आयत की तालीम देना भी हो सकता है। जैसे अहादीस में है, महर की मकदार के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है, बस दुल्हा दुल्हन या दुल्हा और वली باہمی راضی ہوں، مقدار کم ہو یا زیادہ ہو وہی مقرر ہو جائے گا۔ ارے ہاں، 32 روپے حق مہر یہ مقرر کیا جاتا ہے، سکہ رائج الوقت اور یہ فلاں فلاں، یہ بے بنیاد ہے، بلکہ عورت کے حق پر ڈاکہ بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، عورت کو محروم کر دیا جائے۔ سمجھتی ہوں کہ استطاعت کے بعد اعلیٰ حق مہر یہ اصل میں خواتین کا تحفظ، ان کی امپاورمنٹ، ان کی پروٹیکشن، اس سب کے لیے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ آت النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، اگرچہ مہنگائی اور غربت میں اس میں سختی یہ اچھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر بھی تقریباً 12 اوقیہ، جو 480 درہم کے برابر ہے، اور ڈالرز میں شاید تقریباً $1500 بنتے ہیں۔ تو بہرحال استطاعت کے باوجود محروم رکھنا اور اس کے علاوہ رسموں پر بے تحاشا خرچ کرنا، یہ بھی غلط ہے کہ اس کا عورت کو تو کم از کم فائدہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پر مستقبل میں جب کہ کوئی آفت آئے، کوئی پریشانی ہو اور اس کو ضرورت ہو۔ اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ اور کیپیسٹی، استطاعت، یہ بہت اہم ہے۔ کوسچن 2 ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر، دونوں ہاتھ ہی ہتھیلیاں زمین پر ماریں، پھر اسے پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے۔ اللہ نے بیماری یا پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کا تحفہ دیا۔ کوسچن 3 ہے، سورہ النساء کی روشنی میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ممانعت بیان کریں۔ سورہ النساء آیت 49 ہے، الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس میں خود کو بڑی چیز سمجھنا اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی مذمت ہے، اور صرف یہی نہیں، دیگر مقامات بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کسی مقام تک پہنچتا ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، جنت کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مردوں کے لیے زوج کا ذکر آیا کہ انہیں ان کی بیویاں ملیں گی، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب، قرآن میں متعدد مقامات پر مردوں کے لیے لہم فیہا ازواج، اس کا ذکر آیا، یاد رہے کہ عورتوں کے حیا کے پیش نظر ان کے لیے مردوں کا ذکر نہیں، کیونکہ عورت کی محبت کا اظہار اور مرد کی محبت کا اظہار مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ نکاح کے معاملے میں بھی عورت کی خاموشی اس کی اجازت تصور کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جہاں خواہشات کی، بلکہ دل میں آنے والے خیالات کی تکمیل اور حصول کا یوں ذکر کیا کہ جو چاہیں گے وہ پائیں گے، اور وہ ان کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہوگا اور کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیک عورتوں کو بھی جنت میں نیک ساتھی ملیں گے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کئی اور آیات اور احادیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، شر اور خیر کا خالق کون ہے؟ اگر اللہ ہے تو انسان شر کے ارتکاب پر گناہگار کیوں؟ جواب ہے کہ شر اور خیر، یا حسنہ اور سیئہ، اسی طرح نفع اور نقصان، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اچھائی اور برائی کا خالق ہے۔ اس نے امتحان کے لیے سب کو بنایا ہے، اور یہ من عند اللہ ہے۔ حسنہ اور سیئہ، یعنی خیر اور شر، دونوں کو من عند اللہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ بے شک شر بھی اس نے پیدا کیا ہے، لیکن سبب اور کسب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف کر دی۔ بندے کو گناہ شر کے اللہ کے پیدا کر لینے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہی تقدیر کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا، لیکن انسان اس کا مجبور نہیں ہے، انسان آزاد ہے، اور اس کی اپنی چوائس کہ وہ برائی کو چوز کرتا ہے۔ تقدیر تو محض اللہ کا علم ہے۔ اسی طرح اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، مسلط نہیں کیا۔ اب جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسان کو مکمل اختیار دیا، اسی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس سے سوال اور حساب ہوگا۔ وگرنہ دیگر مخلوقات دیکھیں، वो एक न्यूट्रल अल्लाह की अताअत और उसके बजा आवरी हुक्म पर लगी हुई हैं, तो उनसे हिसाब और सवाल नहीं है। जिन्नों इनसे हिसाब और सवाल है क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें इख्तियार दिया, इसी इख्तियार पर पकड़ है कि क्यों बुरा फिर चूज़ किया। रही बास मकामात पर दोनों की निस्बत अल्लाह की तरफ या कहीं फिर बंदों की तरफ, तो बंदों की तरफ निस्बत उनकी कमाई की वजह से है, इंसान की अपनी तकसीर आजिज़ी का इजहार, जबकि नेकी जो इंसान कमाता है वो अल्लाह की तरफ निस्बत उसके फ़ज़ल की वजह से है और उसकी तौफीक और उसकी मदद की वजह से है कि जो नेकी पर चलने वाले के लिए वो रास्ता आसान करता है। अब जो नेकी की तरफ चला ही नहीं और उसने ज़िद्द, अनाद, हठधर्मी, इनकार, शर और सजिया पर किया, तो वो खुद ज़िम्मेदार है। तो ये वाज़ह है कि शर और ख़ैर का खालिक अगरचे अल्लाह है, मगर ये इंसान का अपना इख्तियार और कमाई है जिसकी वजह से फिर वो शर पर गुनाहगार ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? एक तो सफातिया में भी पढ़ा अनामता, और इस बारे में भी आता है अन्निसा 69। وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ। तो यहाँ ये जो है ना अनअमल्लाह, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? इनाम याफ्ता लोग जिनका सवाल हम हर नमाज में करते हैं, इनका जिक्र यही साथ है, अन्नबिजीन, अस्सिद्दीकीन, अश्शुहदाई और आखिर में वस्सालिहीन, वो लोग अम्बिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन हैं। इसी तरह जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत वाले काम करते हैं, अल्लाह उन्हें भी उनका साथ नसीब कर देता है। आगाज़ यहीं से होता है, वमन युति अल्लाह वर्रसूल, और जो अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी करे, फ़ौलाइका मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाह, तो ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। इनाम याफ्ता कौन, किन पर इनाम हुआ पहले? अन्नबिजीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्ल ख़ता का कफ़ारा क्या है? यानी एक ग़लती से कत्ल हो गया, बाई मिस्टेक, अनकॉन्शियसली। जब कोई मुसलमान गलती से किसी मुसलमान को कत्ल कर बैठे, तो उसके दो हुक्म हैं, एक कफ़ारा, दूसरी दियत, यानी खून बहा। कफ़ारा ये है कि वो एक मुसलमान ग़ुलाम, मर्द या औरत को आज़ाद करे, और अगर इसकी ताकत ना हो तो दो माह के मुसलसल रोज़े रखे और उसके वारसों को दियत अदा करे। कफ़ारा तो किसी हाल में साकित नहीं होता, यानी ये तो करना ही करना है। हाँ, दियत अगर वारिस माफ़ कर दें तो साकित हो सकती है, मगर ये उस वक़्त है जब मकतूल के वारिस भी मुसलमान हों या काफिर हों, लेकिन उनसे मुआहिदा हो या ज़िम्मी हों। लेकिन अगर उसके वारिस हर भी काफिर हों, यानी जो ऐसे फॉल करते हैं उनमें आते हैं जो दुश्मनी और मुकाबले में हों, आप मिसाल ले सकते हैं जैसे इंडिया का कोई नेशनल है, इंडियन नेशनल, और काफिर है, तो वो कभी भी मुसलमानों के हक़ में नहीं है, वो हरबी शुमार होगा। इस सूरत में कातिल के ज़िम्मे सिर्फ कफ़ारा है, यानी एक मुसलमान गर्दन आज़ाद करना। अगर ना हो सके, जैसे अब मैसर भी नहीं है, तो दो माह के मुसलसल रोज़े रखना। रहा मकतूल के वारसों को खून बहादा करना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हरबी है, दुश्मन है, और इसकी तफसील आयत 92 में आई है, अन्निसा 92। कत्ल अमद क्या है, अमद का हुक्म क्या है? कत्ल अमद कहते हैं जान बूझ के कत्ल करना। इसका जिक्र आयत 93 में आया, अन्निसा 93। इसमें कत्ल अमद यानी कसदन कत्ल करने का हुक्म बयान फरमाया है। इस सूरत में क़िसास या दियत वाजिब है, या मकतूल के वारिस कुछ माफ़ करते हैं। क़िसास क्या होता है? बदले में कत्ल करना। दियत क्या होता है? जो माली तौर पर मुआवजा बनता है, शरई मुआवजा, दियत, या मकतूल के वारिस कुछ माफ़ कर दें। अन्निसा 93 में अल्लाह ताला ने इस गुनाह की संगीनी बताई, इस जुर्म को इशराक बिल्लाह के साथ ज़िक्र किया, यहाँ से अंदाज़ा होता है। फिर ये कि इसकी जज़ा जहन्नम बताई, जिसमें हमेशा रहे, और अल्लाह उस पर गुस्से हो गया और उस पर लानत की और उसके लिए अदाब अज़ीम तैयार किया। اتنی سخت سزائیں اکٹھے ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ مومن کو قصدن قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے، مسلمان کا قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے۔ یہ سزائیں اس کی سنگینی بتانے کے لیے ہیں، رہا کہ وہ اس پر نادم ہو، توبہ کرے، توبتن نصوح ہو۔ تو شرک جیسے گناہ کی توبہ کے ساتھ معافی ہے، تو ایسا شخص اگر توبتن نصوح کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، جیسے دیگر مقامات پر ہے۔ اور سورہ زمر میں فرمایا آیت 53، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں بھی کبائر گناہ کے بعد معافی کا عام ذکر ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، صلاۃ قصر اور صلاۃ خوف کا طریقہ اور حکم کیا ہے؟ اس کا ذکر النساء آیت 101 میں ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اب حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے، قصر کا معنی کمی ہے، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے کہ رکعات کم ہو جاتی ہیں، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی حیثیت و شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا۔ ظاہر ہے اس میں سجدہ اور رکوع تو پوری طرح ممکن نہیں، یا سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا۔ اچھا، یہاں یہ خوف کی نماز کا ذکر ہے قرآن میں، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سفر کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ تو یہ سبحان اللہ شرعی تحفہ ہے۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے، جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہے، اور رہی میلوں یا دنوں کی مقدار تو نہ تعین قرآن کی کسی آیت میں صاف ظاہر ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں۔ اس بنا پر جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کی تعین کی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموماً سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ اور یہ تو اصول ہے کہ جو بھی سفر، آپ کا آؤٹ گوئنگ ٹریول، واقعی سفر کہلائے، یعنی جس کو آپ ٹریولنگ کہہ سکیں، اس میں قصر کی جا سکتی ہے۔ اس میں فجر اور مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں دو رکعت پڑھنا قصر ہے۔ اگرچہ آیت میں خوف کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص وقت میں نازل ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں اسے جاری رکھا۔ حالت خوف یا جنگ میں نماز کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ قصر میں طریقہ وہی رہتا ہے، یعنی سفر کی قصر، عام سفر کی۔ نماز کا وقت ہو جائے اور خوف کی حالت ہو تو نماز جس طرح بھی ممکن ہو ادا کرے، اگر وہ حفاظت پر معمور ہو جائے اور ایک پڑھ لے یا ایک ایک رکعت بھی پڑھ لی جائے تو یہ نماز درست ہوگی۔ اس لیے قصر تو خوف اور وداؤٹ خوف فیئر، یعنی نماز میں کمی حالت جنگ یا بغیر حالت جنگ کے سفر، دونوں میں ہوتی ہے۔ البتہ طریقہ سیم رہتا ہے عام سفر میں، جبکہ جنگ میں طریقے میں تبدیلی بھی جائز ہے۔ واللہ عالم۔ نیکسٹ کوسچن ہے، النساء آیت 105، وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آیت سن لیجئے، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ احادیث میں ہے، عبیر کے شخص کے بیٹوں نے جو انصاری تھے کسی کی کوئی چیز چرا لی، اور پکڑے جانے کے خوف سے اسے کسی یہودی کے گھر پھینک دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو یہ لوگ جوش میں آ کر چرب زبانی سے باتیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے کہ ہم نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور نشان دہی کی کہ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن، یعنی ان کی سائیڈ نہ لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بر وقت آگاہ کر دیا۔ تو چرب زبانی یہ بعض اوقات انسان کو صحیح فیصلے سے دور لے جاتی ہے، اس میں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں انسان خیانت کرنے والوں کی سائیڈ نہ لے جائے۔ آخر میں ہم اس پارہ اور آیات کی مناسبت سے بخل، سستی، کمزوری اور غفلت سے بچنے کی دعا دہراتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں محتاج کی، عجز، عاجزی، بے بسی، بے انتہائی محتاجگی، والکسل، سستی، والجبن، بزدلی، والحرم اور بڑھاپا، جو انسان کو نیکیوں کی بجا آوری سے عاجز کر دے۔